इसीलिए अगली आयत को देखिए, आयत 70, वलकत करम बनी आदम, और हमने बड़ी इज्जत बख्शी औलाद आदम को, है ना, कितनी टू दी पॉइंट आयत। तुम क्यों खो गए, तुम क्यों जानवरों वाली जिंदगी बसर करने लग गए, तुम क्यों अपनी कदर को नहीं पहचान रहे, तुम्हें अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। किस तरह अल्लाह ने इज्जत दी, शक्लो सूरत के एतबार से देख लीजिए। इंसान दुनिया की सबसे खूबसूरत मखलूक है। आप कहेंगे नहीं मोर बड़ा खूबसूरत है, तो मोर के पर देख लीजिए और मोर की एफिशिएंसी देख लीजिए, जिल देखें, इंसान की स्किन देखें, जिस्म कितना मोतदल है, जराफे को देखें गर्दन कितनी लंबी, हाथी को देखें कितना मोटा ढोल का ढोल, फिर आप देखिए जज्बात का इजहार हम कर सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, अपनी बात कह के बयान कर सकते हैं, माफी ज़मीर अपना बयान कर सकते हैं, फिर और कैसे इज्जत दी, बोल सकते हैं। ये बोलना कितनी बड़ी नेमत है। जानवर जो बोलते हैं ना, जिसमें तोते की बात है, अभी रिसेंटली एक सिस्टर ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। उनके घर में तोता था, तो मैं समझी कि शायद दूसरे कमरे में टीवी चल रहा है, तो उसमें से आवाज़ें आ रही हैं तोते की। बाद में पता चला कि रियल तोते थे, तो बताने लगी कि हम जो बोलते हैं ना तो वो कॉपी करता है। तोता खुद अकल से नहीं बोलता, आपको पता, वो बोलता है जो बोले। तो कहती है उसके पास बैठे होते हैं तो हम जो बोल रहे होते हैं वो बोलते हैं। कहते है, कभी किसी वक्त बेदेहानी में बच्चे को डांट दिया तो वही लफ्ज़ तोता बोल रहा होता है। तो कहती है कि एक दिन क्या हुआ कि मैं सुबह में जब उठ के नीचे आई, ऊपर सोते हैं तो नीचे कमरे में ये होता है, तो कहती है जब मैं सीढ़ियों में आई ना तो मुझे बिल्कुल एक इंसान के ना खांसने की आवाज़ आई, तो मैं एकदम वहीं रुकी, क्योंकि उसके पहले कहती कि हमारे घर में 2 दफ़ा चोरी हुई, एक ही महीने 1.5 के फ़र्क से, कुछ इसी तरह की बात थी। तो कहती है कि चोरी हुई, इतना खौफ बैठ गया कि सीढ़ियों में आई ना तो मुझे नीचे से खांसने की आवाज़ आई, तो मैं वहीं रुक गई। मैंने कहा नीचे कोई है। खैर किस्सा मुख्तसर, थोड़ी देर बाद जब थोड़ी हिम्मत करके नीचे आई तो देखा कि तोता खांस रहा था। और कहती क्यों खांसा, कहती रात को मेरे मियाँ को खांसी थी तो वो उधर ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के खांस रहे थे, तो बिल्कुल उन्हीं की आवाज़ में सुबह वो भी खांस रहा था। अब ये तो तोता है ना। हम इंसान देखें कि अल्लाह ने हमें बोलने की तौफीक दी। अब इस वक्त भी सोचें, हम सब यहाँ बैठे हैं ना, अगर हमारे साथ वहाँ कुछ चिड़ियाँ, तोते होते, कबूतर होते, बिल्लियाँ होती, कुत्ते होते, कुछ भी होते, फिर इन सब को सामने रख कर पूछिए, वलकत करम न बनी आदम। ये सारा जहान अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया, और इंसान इतने छोटे काम करके दुनिया से चला जाए। फिर आप देखिए कि हम लिख सकते हैं, जानवर नहीं लिख सकते, अल्लाह की ज़ात है, उन्होंने हमें सिखा दिया। फिर देखिए कुछ जानवर है गोश्त खाते हैं तो कुछ सब्जी खाते हैं। जो गोश्त खाते हैं वो चारा नहीं खाते, जो चारा खाते हैं वो गोश्त नहीं खाते। हम इंसान क्या खाते हैं, गोश्त, सब्जी, दाल, साग, जो दिल चाहता है सब खा सकते हैं। फिर आप देखिए कि जानवर जो ना ये एक खास जगह से देखते हैं, एक खास एंगल से, बस हम चारों तरफ देख सकते हैं। और आपको पता है कि परिंदे जो होते हैं ना, इनको हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिखती है, कलर्स नहीं दिखते उनको। हमें कलर्ड भी दिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी दिखते हैं। फिर इसी तरह देखिए जब हम लिखते हैं कॉपी पे, कितनी बारीक निब होती है जिससे हम लिख रहे होते हैं, और उसका एक एक लफ्ज़ हम देख देख के लिख रहे होते हैं, जानवर नहीं लिख सकते। लेकिन अफसोस, इंसान ने तो आदम को और इंसान को बड़ी इज्जत दी थी। वहमलनाहु फिल बर्री वल बहरी, और हम उठाए फिरते हैं इन्हें खुशकी और समंदर में। वरज़क़नाहु मिनत तय्यिबाती, और हमने इनको पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया। वफद्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफदीला, और हमने इनको फजीलत दी अपनी बहुत सी मखलूक पर, बहुत बड़ी फजीलत। यानी एक ही इंसान के साथ इतना कुछ करवा दिया कि फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया। देखिए आदम को फरिश्तों ने जो सजदा किया था वो असल में वलकत करम न बनी आदम की एक ताबीर थी। असल में ये इस बात का इजहार था कि फरिश्ते कुछ चीज़ों में इंसान से आगे हैं, लेकिन इज्जत और मर्तबे के एतबार से इंसान बेहतर है, तो इंसान की इज्जत है। लेकिन इंसान ने क्या किया, इसका बेहतरीन अमल आपको दिखेगा सूरह 3 में। व तीन व जैतूनी व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। इंसान बाइज्जत कब है? अब यहाँ थोड़ी सी हम बात करेंगे इंसान की इज्जत पे। जब इंसान नंबर एक पैदा करने वाले के साथ जुड़ जाता है, यानी अल्लाह को मानने वाला, ईमान बंदे को इज्जत देता है। काफिर की कोई इज्जत नहीं है। साफ जाहिर है कि जो बच्चा अपनी माँ को ना माने उसको दूसरा क्या इज्जत देगा। फिर जब रब की बात माने, और जब एक इंसान खुद गिर जाए, 100 बच्चों को कत्ल करके तेजाब में पिघला के ख़त्म कर दे, तो फिर उसकी इज्जत ख़त्म हो जाती है। अलामा इकबाल का एक जुमला याद आ गया, शायद आपको इस मौके पे समझ ज़्यादा अच्छी तरह आ जाए उस बात से। जो नॉन मुस्लिम था उसने कहा कि मुसलमान बड़े गैर महज़ब होते हैं, चोरी करने वाले का हाथ काट देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके ख्याल में चोर एक महज़ब आदमी है कि जिसका हाथ ना काटा जाए? मतलब ये था कि चोरी करके उसने अपना आप ख़त्म कर दिया कि मेरी तो ये इज्जत ही नहीं है। और हाथ क्यों कटता है आपको पता? क्योंकि वो हाथ काबिल इज्जत नहीं रहा, वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ किसी दूसरे के माल पे चला गया। तो जब कोई इंसान इस दुनिया में आने का मकसद नहीं समझता तो उसकी इज्जत ख़त्म हो जाती है। और याद रखिए कि इस आयत में एक बहुत बड़ी हकीकत भी है, इंसान की तख्लीक की मेराज, क्लाइमैक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है। और वो क्या है कि इंसान को अल्लाह ताला ने कुन से नहीं, अपने हाथ से, मराहिल से गुजार कर पैदा किया। आज कायनात के अंदर आपको देखिए जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बेजान है, वो बिग बैंग से पैदा हुई या किसी और से, इसको छोड़ दें, हमारा मौजू नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है कि इंसान को एक मकसद के साथ पैदा किया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जिस तरह ज़मीन ख़त्म होगी, इस पर क़यामत आएगी, क्या दूसरे सियारे और सितारे उनके साथ भी ऐसा होगा? तो उसका जवाब है नो। क्यों? क्योंकि ज़मीन की जो क़यामत है ना, वो क्यों इतनी हाईलाइटेड है? हालांकि हर दिन सियारे सितारे टूट रहे हैं, जिस दिन वो टूट गए उसकी क़यामत आ गई। ज़मीन के ऊपर जो क़यामत आनी है उसकी वजह क्या, किस पर इंसान बसता है? अल्लाह ने इंसान को शऊर दिया, उसको एक ख़ास मकसद के साथ पैदा किया और ये सोच दे के दुनिया में भेजा कि तुम इस दुनिया में जाओगे तो अल्लाह का हुक्म पूरा करोगे। वही बात कर लीजिए कि जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो क्या कहा, इन्नी जाइलुम फिल अर्दी खलीफा। इंसान को अल्लाह ने खिलाफत का काम दिया था, ये था असल में करम नबनी आदम, अल्लाह का नॉमिनेटेड, अल्लाह सुबहान तआला का एम्बेसडर, अल्लाह के पैगाम को दुनिया में आम करने वाला ये इंसान है। और जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में होते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता। यकीन करें, जब आप ज़मीन पे चलते हैं, हवाओं में उड़ते हैं, समंदरों के ऊपर से गुजरते हैं, पानियों के पास से गुजरते हैं, उस वक्त आपको अपने रब की कदर आती है, इतना दिल खुलता है। अक्सर ऐसा होता है, ख़ास तौर पर जब ट्रिप्स पे होते हैं और ट्रैवलिंग होती है। तो इस दफ़ा भी मैंने एक जगह ट्रिप में शेयर की थी ये बात कि जब जहाज़ में थी तो पूरा वक्त बाहर मंजर बदल रहे हैं और कभी कुछ कभी कुछ, और मैं मुसलसल ख़ुद को कह रही थी कि उस अल्लाह के लिए मैं सफ़र कर रही हूँ जिसका ये आसमान है, जिसका सूरज है, जिसका चाँद है, नीचे समंदर इतना बड़ा। हम एक ऐसी जगह गए कि बिल्कुल जहाज़ लैंड होने वाला लेकिन नीचे समंदर, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा गई थी पहले वहाँ भी लेकिन कुछ इतना गौर नहीं किया, शायद रात होगी। बिल्कुल जहाज़ नीचे 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 आ गया, फील हो रहा है कि जहाज़ उतर है लेकिन पूरा समंदर। मैंने कहा अल्लाह खैर करे ये हो कर, और मैं यूँ लाशौरी तो अभी यूँ देख रही थी खिड़की में कि कहीं कोने से कोई कोना दिखे। इतने में व्हील्स भी खुल गए, फिर तो मेरा दिल बंद हुआ, मुझे लगा कि कोई एमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। बिलीव में बिल्कुल ऐसे लग रहा था, व्हील कब खुलते हैं जब बिल्कुल आपको नीचे चीज़ें दिख रही होती हैं, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल हम पानी पे लैंड करने लगे और एकदम बस रनवे समझे कि वो रनवे ही था जो खुश्की पे आया और जहाज़ उतर गया। तो उस वक्त मैंने इस चीज़ को फील किया कि हर दफ़ा जहाज़ में ये जो सिक्योरिटी वीडियो दिखाते हैं, एमरजेंसी और दिस एंड दैट और फलां और फलां, अगर कभी ऐसा हो जाए तो कौन हमें बना देगा, समंदर में जाके डूबेंगे। लेकिन आप देखिए इतनी बड़ी ज़ात जिसने मुझे और आपको पैदा किया, और इतना सा इंसान है जो उस रब की बात नहीं मानता, फिर अकड़ देखे अंदर हमारे कितनी है, फिर भूल जाते हैं। तो जब आप अल्लाह के लिए निकलते हैं ना, अल्लाह के बंदों से मिलते हैं, और जो उनकी मुश्किलें और जो उनके गम और जो उनकी खुशियाँ और उनके जज्बात और उनकी तलब और उनकी हिदायत के लिए तड़प, दिल करता है कि इंसान को 100 जिंदगियाँ मिल जाएँ या एक इंसान के 100 वजूद बन जाए और दुनिया में हर जगह पे अपने आप को सर्व करवा दे कि अल्लाह के बंदों को फ़ायदा हो जाए। इसके बरक्स आप देखिए कि अब आप कर्रम ना बनी आदम के आगे लिखिए कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है। खाता है जानवर, सोता है जानवर, इंसान भी खा ले सो ले, क्या बड़ी बात हुई। बच्चे पैदा करते हैं जानवर, इंसान ने भी कर लिए। घर बनाते हैं जानवर, इंसान ने बना लिया तो क्या बड़ी बात कर ली। फर्क क्या है इंसान और जानवर का, कि जानवर के पास इख्तियार नहीं है और जानवर के पास शऊर नहीं है। जो कह दो वही करेगा, जो उससे करवा लो वही करेगा। इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है। जब इंसान अक्ल के इस्तेमाल से कोरा हो जाता है ना, तो वो जानवर होता है। तीन चार दफ़ा तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं ना पीछे कि उलाइक कल अनाम बल हुम अदल, सूरत सूरत अल अराफ का मुझे याद आ रहा है इस वक्त, कि ये तो जानवरों जैसे हैं बल्कि जानवरों से भी गए गुजरे हैं। तो जब एक रब ने हमें पैदा किया है तो फिर उसके आगे झुकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हम अभी तक जीना ही नहीं सीखे और जाने की बारी आ गई। सच है कि नहीं? ऐसे नहीं लगता कि हमने बस अल्लाह को पहचाना ही नहीं है? बिलीव मी, हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं। वो कोई और खुदा था जिसके साथ हम जीते और मरते थे। कुरान के बाद एक और ज़ात से मुलाकात होती है, और ये है वो ज़ात जिससे क़यामत के दिन मुलाकात होनी है। तो आज अपनी ज़िंदगी को पहचानना है। वफद्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तब्दीला, इससे मिलते जुलते अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ में सिखाए। फरमाया कि जब तुम में से कोई किसी को तकलीफ़ में देखे, मुसीबत ज़दा, बीमार, परेशान, झगड़ रहा है, कोई दीन से दूर है, हिदायत से दूर है, बेदीन है, नंगे कपड़े पहना हुआ है, कोई काम कह लें, तो फिर दुआ मांगो कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलनी अला कसीरे मिम्मन खलक तफदीला। सारी तारीफें उस ज़ात के लिए हैं जिसने मुझे फजीलत दी उस चीज़ से जिसमें इसको मुबतला किया। तो अल्लाह ताला बंदे को उस तकलीफ़ से बचा लेता है। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तू हमें अपनी ज़िंदगी में खैर के साथ रखे। और इसी को आप देखेंगे कि अब आगे आखिरत से जोड़ा जा रहा है। वही मज़मून जो पीछे भी हमने सूरत के आगाज़ में बड़ी डिटेल से पढ़ा था, दोबारा आ गया कि चलो दुनिया में तो जी चुके, अब देखो कि मौत के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। यौम नदू कुल अनासिन बि इमामिहिम, जिस दिन हम बुलाएंगे तमाम इंसानों को इनके सरदारों के साथ, इनके इमामों के साथ। फिर क्या होगा? फमन उतिया किताबहु बियमीनी, फिर जिसको दिया गया उसका नाम है आमाल उसके दाएं हाथ में। फाउलाइका यक़रऊन किताबहुम, तो ऐसे लोग पढ़ेंगे अपने आमाल नामे को खुशी के साथ। वला युस्लमून फतीला, और इन पर जुल्म न किया जाएगा धागे बराबर। और अगली आयत, लेकिन वमन का नफी हाजिही आमा, और जो कोई इस दुनिया में अंधा रहा, फहुवा फिल आखिरति आमा, तो वो तो आखिरत में भी अंधा होगा। वादल्लु सबीला, और राह से ज्यादा भटका हुआ। इस आयत की दो तरह से तफसीर होती है। मैंने जान के लफ्ज इमाम के तर्जमे में लीडर या सरदार या इमाम पढ़ा। एक तो इसका आम मफहूम है कि क़यामत के दिन हर बंदे को उसकी लीडर के साथ बुलाया जाएगा। और ये लीडर कौन होगा? जिसकी लीडरशिप में या जिसकी रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारी होगी। हर गिरोह का रहनुमा या बड़ा मजहबी लीडर है तो उनके मजहबी रहनुमा जिनको फॉलो करते थे, जिनकी तसल्लियों पे आगे चलते थे, और दुनिया भी जिनके साथ गुजारी होगी उनके साथ होगी। एक तो आम मानी है। इसी तरह बास कहते हैं कि इससे इमाम से मुराद नबी भी है। हर एक को उसकी नबी के साथ बुलाया जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है दोनों मानों में। लेकिन अगर इसी आयत का अगला हिस्सा साथ जोड़ें जिसमें नामे अमाल की बात है, पढ़ने की बात है, तो फिर इमाम से मुराद यहाँ हमारे सबसे बड़े सरदार हमारे नामे अमाल है, जो पीछे पढ़ चुके हैं कि इक़रा किताब कफ़ा बि नफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। तो इंसान के नाम अमाल को उसका इमाम क्यों कहते हैं? क्योंकि कुल इंसान अल्ज़मनाहु तायरहु फी उनुक़िही, गर्दन में लटका हुआ है ना, तो गर्दन में लटकी हुई चीज़ कहाँ होती है? सामने होती है, इसलिए इसको इमाम कहते हैं। हम जो कर रहे हैं ना वो बन रहा है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का नक्शा बिल्कुल वही बन रहा है जो हम अपने नामे अमाल में लिख रहे हैं। और जिसको दाएं हाथ में मिलेगा वो अपनी जिंदगी के कारनामे वहां पढ़ लेंगे, खुली किताब की तरह होगी। आप देखिए कि ये बार बार बात कुरान में आती है, आगे तो बहुत ही ज्यादा आएगी। सूरत अल हाका में भी हम पढ़ेंगे आयत 19 से 28 में, सूरत इंशिकाक में आयत नंबर 7 से 13 में भी ये बात डिटेल से आएगी कि जिनके नामे माल अच्छे होंगे वो खुशी खुशी उसको देखेंगे, दूसरों को दिखाएंगे। पिछली आयत में वलकत करोम न बनी आदम था, यहाँ नामे अमाल की बात हो गई, रब्त क्या दोनों में। वो लोग जिनको ये इज्जत रास आ गई, जिन्होंने अल्लाह की दी हुई इस इज्जत को कबूल किया और एक आला मकसद के लिए जिंदगी बसर की, क्यामत के दिन उनको उनके नामे अमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे और आगे आगे उनके नामे अमाल होंगे। सूरह काफ में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि जब लोग कब्र से निकलेंगे ना तो उनके साथ एक साइक होगा और एक शहीद होगा। वहां भी आपको इंशाल्लाह जाके लिखाऊंगी कि ये इंसान के किरामन कातबीन होंगे, उसके अच्छे अमल लिखने वाला फरिश्ता और उसके बुरे अमल। तो कब्र से निकलते फिर उसको लेकर चलेंगे, इसलिए भी उसको इमाम कहा गया कि इंसान क्यामत के दिन अपने नामे अमाल की रोशनी में चलेगा, जो दुनिया में किया था वही वहां मिलेगा। चलिए खुद से पूछते हैं, मेरा नाम है अमाल कैसे। हर एक को खुद भी पता होता है और पता होना चाहिए, कि हम इतने भोले लोग नहीं हैं, सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं अपने नाम अमाल में क्या लिख रही हूँ। खुद से पूछिए अब इन 15 सपारों के दौरान, क्या मेरा दाएं हाथ का अमाल नामा ज़्यादा भारी हुआ है बाएं हाथ से? क्या फरिश्ते को ज़्यादा बातें बाईं तरफ लिखनी पड़ती हैं या दाईं तरफ लिखनी पड़ती हैं? ये सब चीज़ें सोचते जाएं और फिर आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये जो अगले 15 पारे हैं ना, ये नेकियों वाले हों, खैर वाले हों, हम जिंदगी गुजारें। और देखिए ये किस तरह पता चलेगा, ये आपके चेहरों से पता चलेगा। जब एक इंसान जिंदगी का मकसद पा जाता है, अल्लाह से राजी हो जाता है, फिर उसके चेहरे पे सबसे ज्यादा स्माइल होती है, दुख नहीं होता चेहरे पे, एक ही दुख रह जाता है, सिर्फ सिर्फ एक दुख, एक इस तरह कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से जुड़ जाए, दैट्स इट। इसके बाद और कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म। तो दुआ करें कि हम इस तरह के मामले पे हों। फिर यहाँ लफ्ज फतील आया है, फतील के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। फतील उस बारीक धागे को कहते हैं जो खजूर की गुठली के शिगाफ में होता है, एक डिप्रेशन सा होता है ना खजूर में, ऐसे डेप्थ में। तो खुश खजूर होती है बाज़ दफ़ा, तो जब आप छीलते हैं तो एक छिलका सा भी आ जाता है। गीली खजूर होती है ना, उसका खजूर के साथ लगा होता है। सूखी खजूर का, खजूर सूख सूखी होती है तो वो छिलका उसकी गुठली के साथ लग जाता है। इतनी थोड़ी सी चीज़ है, फरमाया वो भी दुनिया में जो की होगी वहाँ देखोगे और तुम्हें वहाँ जुल्म नहीं होगा। फिर आप देखिए कि दुनिया में अंधा होना, आखिरत में अंधा होना, ये क्या है? दुनिया में हिदायत के रास्तों को देखने से अंधे थे तो आखिरत में जन्नत की राह नजर ही नहीं आएगी। दुनिया में जो अंधापन था ना, ये इख्तियारी था, बाय चॉइस था, किसकी इस्लाम मुमकिन थी। लेकिन आखिरत का अंधापन अनरिक्योरेबल है, वो इस्तरारी होगा, वहाँ कोई इलाज नहीं होगा। दुनिया के अंधेपन का इलाज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के अंधेपन का कोई इलाज नहीं होगा। भटकते भटकते दूर से दूर चलते जाएंगे। तो खुद से पूछें कि क्या मेरी ज़िंदगी हिदायत के करीब है या हिदायत से दूर है। और जितना ज़्यादा सोचते जाएंगे उतना अल्लाह ताला आपको मज़ीद सोचने की तौफीक भी देगा, क्योंकि इस दुनिया में अंधे बन के नहीं जीना, वहाँ पहुँचेंगे तो खैर की बात होगी। इसी तरह आपको पीछे भी फ़र्क बताया था, एक लफ्ज़ होता है आ माँ, जैसे यह है, दिल का अंधापन होता है। ओम युन और ओम हुन का फ़र्क याद कर लीजिए। तो यहाँ आ माँ से मुराद दिल का अंधा, हक से अंधा, समझने से अंधा, कबूल करने से महरूम, तो आखिरत में भी अंधा होगा। अल्लाह ताला हमें दिल के अंधेपन से बचा के रखे। ये सारा सबक पीछे से चल रहा है, शैतान की धमकियाँ, शैतान के वार, और उसके बाद अब इंसान की इज्जत। ये इंसान की इज्जत नहीं है कि शैतान इतनी धमकियों के बावजूद अपना जोर इंसान पे नहीं लगा सकता। तो शैतान से ही सीख लें कि शैतान अपना गोल कैसे हासिल करता है। प्लानिंग है, मेहनत है, अनथक कोशिश करता है। फिर स्टेप्स में काम करता है, ग्रेजुअली काम करता है, मौका मुनासिबत देख के करता है, छोटी छोटी चीज़ों में लेकर फिर बड़ी चीज़ में लेके जाता है। क्या हम इसी तरह से नेकियों के काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ सोचने की बात है। देखिए, खुद को ज़ाया ना करें, हर दिन खुद को शीशे में खड़े होकर कहा करें, मैंने खुद को ज़ाया नहीं करना, मैंने ज़ाया नहीं करना। गेट मोर फ्रॉम लाइफ, ज़िंदगी से कुछ ले के जाएं। जब दुनिया से चले जाएं तो लोगों को थोड़ा फ़र्क लगे कि कोई गया है दुनिया से, हम चले जाएं, लोग कहें चलो शुक्र है एक जगह ख़त्म हुई। जी पीछे से आप ही रहो। वालेकुम अस्सलाम। जी आप 26 इयर्स की भी बात कर रहे हैं, तो वो शायद दोनों नहीं बताया भी होगा कि बाप भी बीमार हैं और बेटा भी बीमार है, गिरे हैं और शायद उनको ऐसी चोट लगी है कि अनरिक्योरेबल है और डॉक्टर्स ऑपरेट नहीं कर पा रहे, घर ले जा रहे हैं। और 25 साल या 26 साल ये बता रही हैं, तो 25 साल बेटे को कैंसर डायग्नोज हो गया, दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं और वो अब उनको मिलने जा रही हैं। कैन यू बिलीव? क्या जो किसी के साथ हो सकता है ये मेरे साथ नहीं हो सकता? अल्लाह हम सब को आफियत में रखे। आफियत की दुआएँ मांगा करें। ये लिखती हैं कि उस्ताजा जी, इस कोर्स से पहले मेरे दाएं बाजू का फरिश्ता बहुत सुस्त था, लेकिन अब माशाल्लाह वो बड़ा एक्टिव हो गया है, अब लगता है कि वो जायज़ तनख्वाह ले रहा है, अल्लाह सुबहान तआला से कुछ ना कुछ काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या तनख्वाह देते हैं उसको? बहरहाल, अपने फरिश्तों को देखने की ज़रूरत है, खुद देखें। आप फील करेंगे कि जब आप इन चीज़ों में सोचते हैं तो बात होती है। देखिए, जिस दिन सुबह उठ के आपने प्लानिंग की होती है ना कि आज क्या करना है, उस दिन आप बहुत कुछ कर लेते हैं, और जिस दिन को ऐसे ही गुजार देते हैं ना, ढीला ढीला, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यकीन करें, यहाँ पाते हैं तो हो सकता है बाकी दिन में भी कुछ कर ही लेते होंगे जाके, और जिस दिन सुबह उठें 11-12 बजे, तो वो पूरा दिन ज़ाया हो जाता है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है हमारा। जी ये लिखती हैं कि अल्लाह अकबर, माई मदर वेंट टू सी वाइफ ऑफ हर ब्रदर हु हैज़ हॉस्पिटलाइज्ड, बट शी केम बैक हर सेल्फ हाफ पैरालाइज्ड, अ बिग लेसन, लेटर डायग्नोज ब्रेन ट्यूमर। किसी को देखने गई हैं और ख़ुद बीमार हुई और पता चला कि ब्रेन ट्यूमर। कितना कमज़ोर है इंसान, मैं कहती हूँ कभी बैठ के इंसान सोचे तो सही, कितना कमज़ोर है इंसान।
ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا